लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गाजा में मानवीय संकट की भयावहता पर गहरा दुख प्रकट करते हुए तुरंत युद्ध विराम लागू किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी आबादी की पीड़ा को अन्य क्षेत्रीय टकरावों की छाया में नहीं छिपाया जा सकता और मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने की जल्द से जल्द अनुमति दी जानी होगी। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि गाजावासी अब भी गहरे मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। भोजन पाने की तलाश में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इसराइली सैन्य कार्रवाई से फिलिस्तीनी आबादी व बुनियादी ढांचे को गहरी क्षति पहुंचना भी जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गाजा में मानवीय संकट की भयावहता पर गहरा दुख प्रकट करते हुए तुरंत युद्ध विराम लागू किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों की एक बार फिर निंदा करते हुए कहा कि उसके बाद गाजा में इसराइली सैन्य हमलों से भयावह स्तर पर मानवीय संकट उपजा है। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसराइल और ईरान के बीच हिंसक टकराव समाचारों में छाया रहा, मगर गाजा में फिलिस्तीनियों की पीड़ा को परछाई में धकेल दिए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
The ceasefire achieved between Iran and Israel offers hope, and hope is more needed than ever. So it is time to find the political courage.
यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस कह रहे थे कि ईरान व इसराइल के बीच युद्ध विराम से आशा बंधी है और इस उम्मीद की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। इसलिए अब गाजा में युद्ध विराम लागू करने के लिए राजनीतिक साहस जुटाने की आवश्यकता है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसराइल एक काबिज शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मानवीय सहायता सुलभ बनाने के लिए जिम्मेदार है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस के शब्द। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जारी इस क्रूर संकट के कारण पहले किसी समय की तुलना में वहां आज कहीं अधिक संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं। आश्रय स्थलों और परिवारों पर बम गिराए जा रहे हैं और लोग केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में जान गंवा रहे हैं। उधर गाजा में मौजूद WHO के आपात चिकित्सा दल के समन्वयक डॉ लूका पिगोजी ने कहा है कि वहां लोगों को वाकई गोली मारी जा रही है। फिलहाल मिल रही मदद जरूरत के विशाल दायरे की तुलना में समंदर में एक बूंद के बराबर है।
न्यूयॉर्क सिटी के मैनहेटन इलाके में गुरुवार का दिन कुछ खास था, इस मायने में कि कई दिन की चिलचिलाती गर्मी के बाद कुछ बादलों की छांव में चल रही ठंडी हवा के बीच अनेक यूएन राजनयिकों ने उसी मार्ग पर दौड़ लगाई जहां से 80 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र के आरंभिक वजूद के चिन्ह नजर आए थे। यह दौड़ प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर से शुरू होकर पूर्वी नदी के पास उसी बिंदु पर खत्म हुई जहां इस समय यूएन मुख्यालय स्थित है। यह अवसर था यूएन चार्टर की 80वीं वर्षगांठ मनाने का, जिसके लिए यूएन महासभा में भी गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
8 दशक पहले 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। दूसरे विश्व युद्ध से हुए विध्वंस की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया ये एक ऐसा दस्तावेज था जिससे इतिहास की दिशा बदल गई। इसकी प्रस्तावना में महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत किए गए, भविष्य में युद्ध की रोकथाम करना, मानवाधिकारों में फिर से भरोसा जगाना और शांति व सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र के इस संस्थापक दस्तावेज की 80वीं वर्षगांठ पर इस सप्ताह जनरल असेंबली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश।
The charter has given us the tools to change destinies, save lives and deliver hope to the most desperate corners of the world.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि यूएन चार्टर ने हमें भाग्य को बदलने, जिंदगियों की रक्षा करने और विश्व के सबसे हताश इलाकों में आशा पहुंचाने के साधन दिए हैं और तीसरे विश्व युद्ध को होने से भी रोका है, मगर संप्रभु राष्ट्रों के विरुद्ध बल प्रयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, आम नागरिकों पर जानबूझकर हमले और भोजन, जल जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल, यूएन चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर वैकल्पिक नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला है।
यूएन के सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के एक दशक बाद विकास क्षेत्र को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कम आय वाले देशों में कर्ज और उस पर ब्याज के भुगतान का मूक संकट भी शामिल है। स्पेन के सेविया में विकास के लिए वित्त पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FFD4 के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
निर्बल और जरूरतमंद लोगों की मदद करना कोई दान नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए साझा निवेश है। इसके बावजूद आज वैश्विक विकास के लिए वित्तीय सहयोग में भारी कटौती देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र इस स्थिति में बदलाव लाने की दिशा में प्रयास करते हुए स्पेन के सेविया शहर में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के तौर पर लड़कियों की शिक्षा में लगने वाला हर एक डॉलर औसतन $3 तक की वापसी देता है, जिससे अरबों डॉलर का अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद उत्पन्न होता है। इसी तरह पानी और स्वच्छता पर खर्च किया गया हर एक डॉलर लगभग $4.25 की स्वास्थ्य सेवाओं की बचत कराता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि आंकड़ों से साबित होने वाले नतीजे हैं। गणित न तो लैंगिक पहचान देखता है और न ही आधारभूत ढांचा, ये केवल वास्तविकता को संख्याओं में दिखाता है। और ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि जिन देशों के पास सबसे कम संसाधन हैं उनकी मदद करना सभी के लिए लाभकारी है और इससे लाभान्वित होने वालों में अमीर देश भी शामिल हैं।
चांद जो रात के अंधेरे में हमें खामोशी से ताकता है, आज खुद समय को लेकर उलझन में है। चांद पर समय बता पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं है, यह मुद्दा हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है, लेकिन यह सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि फिर से चांद पर जाने और वहां शोध करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नए मिशन, नई उम्मीदें और एक बड़ा सवाल, वहां समय कैसे चलेगा। एक रिपोर्ट के साथ पूजा यादव।
धरती पर तो समय तय करने के लिए सूरज, देशांतर रेखाएं और हमारे घड़ियों के नियम हैं, लेकिन चांद पर समय को किस तरह निर्धारित करें? वहां सूरज 14 दिन लगातार चमकता है और कुछ पहाड़ों पर तो रात का नामो निशान नहीं। वहां एक दिन धरती के 29.5 दिनों जितना लंबा होता है। ऐसे में अगर अलग अलग देश अपने अपने मिशन के लिए चांद पर जाएंगे तो समय की गड़बड़ी तकनीकी संकट में बदल सकती है। इसी को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल शुरू हुई है। उनूसा यानी संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों का कार्यालय अब इस दिशा में काम कर रहा है कि चांद के लिए एक साझा, भरोसेमंद और सबके लिए स्वीकार्य समय तय हो। साल 2024 में ICG यानी वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली समिति ने एक विशेष कार्य समूह बनाया जो चांद का घड़ी तंत्र तय करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा समय जो धरती के UTC से जुड़ा हो लेकिन चांद की जरूरतों के हिसाब से हो, यह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष कूटनीति का हिस्सा है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
तू है दया का सागर पिता,
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम शहर के परिसर में कास्टल गोंडोल्फो स्थित विला बर्बेरिनी प्रेरित प्रासाद में जारी कार्यों का निरीक्षण करने शुक्रवार 3 जुलाई को संत पापा लियो 14वें ने कास्टल गोंडोल्फो का रुख किया, जहां आगामी रविवार से वे कुछ समय ग्रीष्मकालीन विश्राम की अवधि व्यतीत करेंगे। परम धर्म पीठे प्रेस द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार संत पापा लियो 14वें रविवार 6 जुलाई को रोम से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कास्टल गोंडोल्फो जाएंगे तथा वहां 20 जुलाई तक रहेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार इन 14 दिनों के दौरान संत पापा रविवार 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे संत तोमासो दो विलानोवा के पोंटिफिकल पल्ली में ख्रीस्त्याग अर्पित करेंगे। तदुपरांत वे प्रेरित प्रासाद के सामने वाले प्यात्सा देला लिबर्ता में देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे। रविवार 20 जुलाई को सुबह 9:30 बजे वे अल्बानो के महागिरजाघर में ख्रीस्त्याग अर्पित करेंगे। यह वही महागिरजाघर है जिसके नामधारी महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल प्रेवोस यानी कि संत पापा लियो रहे हैं। रविवार 20 जुलाई को ही अपराह्न 12 बजे संत पापा प्यात्सा देला लिबर्ता में फिर से देवदूत प्रार्थना का पाठ कर तीर्थयात्रियों को अपना संदेश देंगे। इसी दिन दूसरे पहर वे पुनः वेटिकन लौट आएंगे। विज्ञप्ति में यह खुलासा भी किया गया कि जुलाई माह के दौरान संत पापा लियो की सभी निजी मुलाकातें स्थगित रहेंगी तथा आम दर्शन कार्यक्रम बुधवार 30 जुलाई को ही पुनः आरंभ होंगे। स्पेन के आंदालूसिया प्रांत स्थित सिविलिया नगर में विकास के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन में प्रतिनिधि देशों के सदस्यों को संबोधित कर वेटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माधीश गैब्रियल काच्या ने कहा कि विकास को मानव गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। एकजुटता और सामान्य भलाई की खोज पर आधारित समावेशी मुख्यधारा और निष्पक्ष बहुपक्षवाद के महत्व की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विकास लोगों का प्रश्न है, न केवल संकेतकों, उपकरणों या संस्थानों का। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि विकास को सभी की गरिमा को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि सभी की भलाई होता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि परम धर्म पीठ ऋण की कमी को मौलिक और बड़े पैमाने पर तत्काल और सुसंगत कार्रवाई के रूप में आवश्यक मानती है। वेटिकन धर्माधिकारी के अनुसार परम धर्म पीठ का मानना है कि मौजूदा वित्तीय ढांचा विकास के इस समग्र दृष्टिकोण को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता। जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए आवश्यक है जो सबसे अधिक कठिनाई में है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अक्सर ऐसे निर्णयों और प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है जो आम भलाई की सेवा करने के बजाय सबसे कमजोर लोगों को कठिनाई में छोड़ देते हैं। और पेयजल, पर्याप्त भोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करते। मानवीय गरिमा के सम्मान का मर्म समझाते हुए महाधर्माधीश काचा ने कहा कि इसका अर्थ है व्यक्ति का समग्र विकास, जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति शामिल हो। निर्देशक लॉरिस लाई ने वैटिकन न्यूज से अपनी नई फिल्म हाउ किड्स रोल के बारे में बात की, जो सर्फिंग के साझा प्रेम से एक साथ आए एक फिलिस्तीनी और एक इजरायली दो युवाओं के बीच अप्रत्याशित दोस्ती के बारे में है। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनिसेफ द्वारा उद्धृत रिपोर्टों के अनुसार 2023 में गाजा पट्टी में युद्ध छिड़ने के बाद से लगभग 50,000 बच्चे मारे गए हैं या घायल हुए हैं। जो बच गए हैं उन्हें लगभग हर रोज बमबारी का सामना करना पड़ रहा है और इस साल मई में ही 5,000 से अधिक बच्चों में गंभीर कुपोषण का पता चला। इतालवी अमरीकी निर्देशक लॉरिस लाई की नई फिल्म हाउ किड्स रोल इन्हीं बच्चों की कहानियों पर केंद्रित है। द चिल्ड्रन ऑफ गाजा उपन्यास पर आधारित यह फिल्म वर्तमान संघर्ष के दौरान नहीं बल्कि 2003 में द्वितीय इंतिफादा के दौरान सेट की गई है। यह एक फिलिस्तीनी लड़के महमूद और एक इजरायली लड़के एलन के बीच अप्रत्याशित दोस्ती की कहानी है। फिल्म के प्रशंसकों में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस भी शामिल थे, जिन्होंने रिलीज के तुरंत बाद वैटिकन में उक्त फिल्म देखी थी। उन्होंने लिखा कि यह फिल्म फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों की आशा भरी आवाजों के साथ भाईचारा, सामाजिक मैत्री और शांति के निर्माण में एक महान योगदान होगी। नाइजीरिया में लगातार हिंसा और विस्थापन का सामना कर रही जनता को दृष्टिगत रख कैथोलिक धर्माधीश गैब्रियल डूनिया ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील की है। नाइजीरिया में हिंसा का बढ़ना कई सालों से चिंता का विषय रहा है। हथियारबंद समूह गांवों और घरों पर हमला करते हैं, लोगों का अपहरण करते हैं और अक्सर उनकी हत्या कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमले धार्मिक या जातीय मतभेदों के कारण होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि इन हमलों के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता। संत पापा लियो ने हाल ही में 15 जून को बेनुए राज्य में एक क्रूर हमले में 200 लोगों के मारे जाने के तुरंत बाद अपनी रविवारीय देवदूत प्रार्थना के दौरान नाइजीरिया के लोगों के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने नाइजीरिया में सुरक्षा, न्याय और शांति के लिए प्रार्थना की और कहा कि वह विशेष रूप से बेनुए राज्य के ग्रामीण ईसाई समुदायों के बारे में सोच रहे थे जो लगातार हिंसा के शिकार रहे हैं। धर्माध्यक्ष डूनिया ने हिंसा की समाप्ति और शांति की बहाली संबंधी संत पापा लियो के आह्वान का स्वागत किया और कहा कि संत पापा के शब्द दर्शाते हैं कि नाइजीरिया के लोग अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं। लगातार और अप्रत्याशित हमलों से चिन्हित असुरक्षा के माहौल का वर्णन करते हुए धर्माध्यक्ष डूनिया ने कहा, डाकू जिन्हें अक्सर फुलानी चरवाहों के रूप में संदर्भित किया जाता है हर जगह हैं। वे खेतों में, सड़कों में और यहां तक कि घरों के अंदर भी हमला करते हैं। लोगों को झाड़ियों में ले जाते हैं, कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को फिरौती देने के बाद छोड़ दिया जाता है। यहां तक कि ऐसे परिवार के लोगों को भी जो मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। धर्माध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि गिरजाघरों और गिरजाघर कर्मियों पर कई हमलों के बावजूद बुलाहटें जारी हैं। उन्होंने कहा, युवा लोगों में अभी भी उम्मीद है, वे हार नहीं मान रहे हैं, वे आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।